मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 28 फरवरी 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, जब अगला इतवार होगा तो मुझे मालूम है कि हम एक नए रूप में मिल रहे होंगे। नए रूप में मिल रहे होंगे का मतलब है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट प्री एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके होंगे और अपने बारे में थोड़ी सी धारणा भी बना चुके होंगे कि अब प्री को हम क्वालिफाई कर पा रहे हैं या क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसे ही मैंने कहा है नए रूप में मिलेंगे, यानी कि आपकी मानसिकता थोड़ी सी बदली हुई मानसिकता होगी, या आप में से बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लास्ट आवर पर डिसीजन ले कि नहीं, मुझे एग्जाम नहीं देना है क्योंकि तैयारी ठीक नहीं हुई है, क्यों मैं अपना एक चांस खराब करूं। और साथ ही मेरे जो श्रोता हैं, चूंकि उनका दायरा बहुत बड़ा है, तो ऐसे भी होंगे जिनको इस बार के प्री एग्जामिनेशन से कोई लेना देना भी नहीं है। खैर, जो भी स्थिति हो, लेकिन अगर आपको लेना देना भी नहीं है और एग्जाम हो चुके हैं तो फिर भी आपकी कहीं ना कहीं दिमाग में ये उत्सुकता है कि यार देखें कि पेपर कैसा आया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं नयापन तो होगा ही। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, जो नयापन है वो हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा ही लाता है। तो दोस्तों, तो आइए अब इस सप्ताह में भी अब हम शुरुआत करते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तैयारी के बारे में। जैसा कि मैंने आप सब से कहा था कि दो सप्ताह हम इस विषय को फिलहाल देंगे, एक सप्ताह पूरा हो चुका है और अब दूसरे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ही विषय पर कि जो दुनिया के जो देश हैं, देखिए हर देश अपने अपने ढंग से विदेश नीति का निर्धारण करता है। हर देश, जो अमेरिका जिस तरीके से करेगा उस हिसाब से इंग्लैंड नहीं करेगा, जिस तरीके से इंग्लैंड करेगा उस तरीके से रशिया नहीं करेगा, जिस तरह से रशिया करेगा उस तरह से चाइना नहीं करेगा, और जैसा चाइना करेगा वैसा भारत नहीं करेगा। सभी देश अपने अपने ढंग से करते हैं। इससे यह सुनने के बाद दिमाग में ये धारणा बनती है कि इसका मतलब है कि सभी की विदेश नीतियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है, ये एक विलोम में संतुलन की स्थिति होती है। विलोम में संतुलन का क्या मतलब हुआ कि हो सकता है कि हम एक दूसरे के विरोधी हों। देखिए, विरोधी क्यों, विलोम की मैं क्यों कह रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो सबसे बड़ा रोल होता है, बट नेचुरल है कि अपने अपने हितों का ही तो होता है ना, कि भाई हमारा हित किससे सधेगा। सब अपने अपने हित देख रहे हैं, तो जब सब अपने अपने हित देख रहे हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि ये दो देश आपस में बात कर रहे हैं और दोनों के हित विरोधी हैं, दोनों के हित एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे नीति का निर्धारण होगा। इसे ही मैंने कहा है विलोम का संतुलन, यानी कि जो विरोधी शक्तियां हैं वो एक ऐसे बिंदु पर ले आई जाएंगी कि उनमें संतुलन स्थापित हो जाए, जहां हम कुछ समर्पण करते हैं बदले में कुछ हमें मिलता है, बस वहां विदेश नीति का संतुलन बिंदु आ जाता है और उसका निर्धारण हो जाता है। कुल मिलाकर के ये मित्रों की विरोध होने के बावजूद सभी अपने अपने हितों की रक्षा करते हैं, इसके बावजूद कुछ ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे फैक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण करने में बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसे किए गए हैं, मैं उन्हीं की यहां संक्षिप्त में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करें। ये टॉपिक आपको विस्तार से मालूम होना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने समय की मर्यादा है, लिमिटेशन है, इसलिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बता दिया है और आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है। ये चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना चाहिए, और मैं ये जानते हुए ये बात कह रहा हूं कि परीक्षा में शायद ही इस तरह के प्रश्न पूछे जाए। मित्रों, मैं आपको एक इसके बारे में रेफरेंस देना चाहूंगा। सिविल सर्विस के लिए आपके पास कुछ ऐसे रेफरेंस होने चाहिए जिनका आप चौतरफा उपयोग कर सकें, यानी कि बहुत जगह पर उनका उपयोग हो जाता है, बहुत से टॉपिक में उनका उपयोग हो जाता है। तो मैं यहां आपको एक रेफरेंस देना चाह रहा हूं। आपको इतना शायद मुझे लगता है कि मालूम होगा, नहीं तो आपने पढ़ा भी होगा पॉलिटिकल साइंस में, कि जो कोई भी जो राष्ट्र है जो बनता है उसकी जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो सबसे बड़ी शक्ति होती है, वो होती है सॉवरेंटी, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। वही किसी राष्ट्र को सही मायने में राष्ट्र बनाती है, राइट। तो ये जो संप्रभुता है, बट नेचुरल है कि जब कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करेगा तो याद रखिए कि वो अपनी इस संप्रभुता पर आंच आने देना नहीं चाहेगा, मतलब अपनी संप्रभुता को वो गिरवी नहीं रखेगा। वो इस बात का ध्यान रखेगा कि उसकी जो संप्रभुता है वह इंटैक्ट रहे, उस पर कोई हस्तक्षेप न हो, यानी कि वह अपने आंतरिक मामलों में और अपने वैदेशिक मामलों में यानी विदेश नीति के मामले में भी पूरी तरह से आजाद है। बस ये है संप्रभुता, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। देखिए, अब ये बात अलग है कि अब हम जिस स्टेज पर पहुंच गए हैं उस स्टेज पर सीधे सीधे तो दबाव नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष दबाव होता है। जैसे अभी आप ईरान को ले लीजिए, अगर हम ताजी घटना की बात करें तो अब वो जो न्यूक्लियर डील पाकिस्तान के साथ थी, उसे पाकिस्तान सॉरी न्यूक्लियर डील जो उसकी अमेरिका के साथ थी, अमेरिका ने उसे खत्म कर दिया, एक तरफा खत्म कर दिया। अब ये ईरान पर एक दबाव डाला जा रहा है। तो ये हालांकि सीधे सीधे नहीं कहा जा रहा है कि हम आपकी सॉवरेंटी को खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब उसकी नीतियों पर तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो अप्रत्यक्ष प्रभाव बहुत से ऐसी चीजों के होते हैं। जैसे अब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कोई देख लीजिए या विश्व बाजार कोई देख लीजिए, तो कितने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रेशर होता है दूसरे देशों पर, खासकर विकासशील देशों पर तो प्रेशर होता ही है कि ये जो विकसित राष्ट्र हैं लगातार विकासशील देशों को ऐसी शर्तें मानने के लिए दबाव डाल रहे होते हैं जो अन्यथा उनके हित में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं उन्हें झुकना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक सत्ता है वो उनके हाथ में ही होती है। मित्रों, इसके बारे में मैं आपको एक संदर्भ देना चाहूंगा और इस संदर्भ को आपको नोट कर लेना चाहिए, यह बहुत जगह काम आएगा, क्योंकि संप्रभुता का सवाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा होता है। वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र, जो चार्टर ऑफ यूएनओ कहलाता है। जो घोषणा पत्र है उसकी धारा है 14वीं धारा, उसमें उस पर दस्तखत करने वाले जितने भी देश हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि वे सभी देश पर आपसी संबंधों को, परस्पर संबंधों को, है ना, संप्रभुता के सिद्धांत, पहला पॉइंट है संप्रभुता के सिद्धांत। दो पॉइंट इसमें मेंशन किए धारा 14 में, इंपॉर्टेंट दो पॉइंट। पहला तो यह कि संप्रभुता के सिद्धांत, यानी कि हम दूसरे देश की संप्रभुता का आदर करेंगे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट दिया है उसमें कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार जो भी इंटरनेशनल लॉ बनेंगे हम उन इंटरनेशनल लॉ को ऑनर करेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे। मतलब हम जो भी विदेश नीति बनाएंगे, देखिए जो दूसरे देशों के साथ संबंध, परस्पर संबंध, यही विदेश नीति है। जब भी हम दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, चाहे व्यापारिक संबंध ही क्यों ना हो, लेकिन वो विदेश नीति का हिस्सा होता है, राइट, इंटरनेशनल अफेयर जिसे हम कहते हैं। तो पारस्परिक जो संबंध होंगे वो इस तरह से होंगे कि दूसरे देश की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आए, और दूसरी है कि हमारी कोशिश होगी, कोशिश नहीं बल्कि हम करेंगे ही कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, उनको हम ऑनर करें। तो ये सभी को अपनी विदेश नीति में इसका ध्यान रखना होता है, और जब कोई इसका उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो बट नेचुरल है कि फिर यूएनओ है या जो दूसरे देश है वो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, जो फैक्टर है निर्धारक तत्वों के तहत, तो वो है भौगोलिक स्थिति, यानी कि कोई भी देश अभी कहां है। भौगोलिक स्थितियों में कई चीजें हो जाती है, मतलब एक ही चीज नहीं है कि वो कहां है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, तो बट नेचुरल है कि वो थोड़ा सा शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा क्षेत्रफल उसके पास है। जब क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तो बट नेचुरल है कि उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा होंगे, उसकी आबादी भी बहुत ज्यादा होगी, क्षेत्र उसका बहुत है, तो इस रूप में वो देश शक्तिशाली बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं, आज अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है, तो आप देखिए कि उसका भौगोलिक क्षेत्र कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। दूसरा क्या है, रूस है, पहले तो सोवियत रूस था, उस समय तो क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसके बावजूद अभी भी वो बहुत बड़ा क्षेत्र वाला है। रूस दूसरी बड़ी शक्ति है, उसका क्षेत्रफल देखिए, चाइना को देखिए, नक्शे में देखिए चाइना को, चाइना का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। भारत को देखिए, तो आप एशिया में अगर चाइना के बाद देखेंगे कि तो भारत का भी क्षेत्रफल बहुत बड़ा, भारत भी अब एक शक्ति बन रहा है। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि भौगोलिक वातावरण ही सब कुछ होता है, और जो अगर कोई भौगोलिक दृष्टि से बड़ा होगा तो वो ताकतवर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्यतया ऐसा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो आप कनाडा को देखिए, अमेरिका के बिल्कुल ऊपर है, बहुत बड़ा उसका भौगोलिक क्षेत्र है कनाडा का, लेकिन वो तो उतना ताकतवर नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि फिर यह भी देखना होता है कि भाई वो जो देश है भौगोलिक दृष्टि से तो बड़ा है, लेकिन उसकी लोकेशन कहां है। जैसे कहा जाता है ना कि बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ नहीं पनपते, तो भैया वो जो कनाडा है वो अमेरिका से लगा हुआ है, तो अमेरिका की छत्र छाया में कनाडा नहीं पनप सकता, तो कनाडा शक्तिशाली नहीं बना। फिर आप अगर लैटिन अमेरिका में चले जाएं, दक्षिण अमेरिका में, तो देखिए कि ब्राजील का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, अर्जेंटीना का भी क्षेत्रफल काफी बड़ा है, लेकिन यह शक्तिशाली नहीं है। उसका कारण क्या? हालांकि ठीक है, ये सब दोनों देश लैटिन अमेरिका के अभी इमर्जिंग देश है, मतलब अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये इनके जितने भी नगर हैं, जो जनसंख्या का जो जमाव है वो ज्यादातर समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में है, तो तटवर्ती क्षेत्रों में होने के कारण जो पॉपुलेशन है उसका जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपर सिस्टमैटिक या वो नहीं है, उसकी वजह से वो शक्तिशाली नहीं बन पाया। उसके उन सबके ज्यादातर हिस्सों में आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे, सघन वर्षा वन कह लीजिए हिंदी में। तो जब सघन वर्षा वन है तो बट नेचुरली कि फिर आप उस भौगोलिक क्षेत्र का उस तरीके से उपयोग नहीं कर सकते कि आपके लिए वो शक्तिशाली हो सके। ठीक इसी तरह से देखें तो कि उनकी जो लोकेशन है वो कहां है, लोकेशन कहां है, मतलब वो किस जगह पर स्थित है। एक तो मैंने पड़ोसी देश के बारे में बताया कि अगर ऐसा है तो फिर उसका उबरना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये भी है कि अब जैसे देखिए नेपाल, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी नेपाल होकर के आए, 3 बार नेपाल होकर के आ गए, जबकि छोटा सा देश है, कोई शक्तिशाली देश नहीं है। चीन भी वहां अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई ऐसा नेपाल में क्या है? देखिए सिंपल सी बात है कि नेपाल की जो लोकेशन है, जिसे हम कहते हैं बफर स्टेट, यानी दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा सा राज्य। अब चूंकि दो बड़े देशों के बीच में वो छोटा राष्ट्र है, तो सामरिक दृष्टि से यानी कि युद्ध रणनीति की दृष्टि से उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर आपको सेना इधर से उधर भेजनी है या उधर वाले को इधर आनी है, तो बटने चढ़े कि आपको लैंड एरिया चाहिए, यहां तक कि विमान के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर वह आपका मित्र है तो बटने चढ़े कि आप फिर युद्ध की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली हो जाते हैं। तो अब वो छोटा सा ही देश है, लेकिन चूंकि वो एक बफर स्टेट है, तो बफर स्टेट होने के कारण उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो अपनी नीति का निर्धारण फिर वैसे ही करेगा, वो अपने टर्म्स डिक्टेट करेगा। और ये एक के साथ नहीं है, आप देखिए मालदीव को देखिए, आप जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं उन आइलैंड्स को देखिए, क्योंकि आइलैंड नेवी के लिए बहुत बड़ा बेस प्रोवाइड करते हैं, नौसेना के लिए, क्योंकि समुद्र में ही वो स्थित है ना। तो इस तरीके से उनकी लोकेशन भी काम करती है कि भू राजनीतिक स्थिति जिसको हम कहते हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, भू राजनीतिक स्थिति। मैंने जो कनाडा वाला की बात की वो तो एक तरह से भू स्थिति है, लेकिन ये भू राजनीतिक स्थिति, ये थोड़ा सा फर्क है, इसे स्पष्ट समझिएगा। फिर देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, बट नेचुरल है कि वो तो काउंट करते ही है नेचुरल रिसोर्सेज, वहां नेचुरल रिसोर्सेज कैसे। इसमें बहुत अच्छा जो उदाहरण हो सकता है वो हम पश्चिम एशिया के देशों को ले सकते हैं, जैसे अरब राष्ट्र आप ले लीजिए। तो अब आप देखिए कि उसमें सऊदी अरब है या जो और भी जो दूसरे देश हैं जहां तेल खूब मिल रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ खूब है। अब आप देखिए कि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है, जब दुनिया के देश चाहते हैं कि इनसे हमारी दोस्ती हो, कुछ देश चाहते हैं कि भैया इन पर किसी वो मतलब संप्रभुता के हिसाब से आप उस तरह से तो अधिकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो हमारे ब्लॉक में हो, हमारे गुट में शामिल हो जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पास वो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधन का जो महत्व है, जो आर्थिक महत्व है, उसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसके बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। नो डाउट कि कहीं ना कहीं जो जनसंख्या है वह भी अपने आप में मायने रखती है। आज के संदर्भ में जनसंख्या इसलिए मायने रखती है कि आपको दो चीजें तो जनसंख्या प्रोवाइड कर देती है, एक तो श्रम लेबर, और जो दूसरा है वो है मार्केट यानी कि उपभोक्ता। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, बाजार दुनिया का मिलकर के एक हो गया है, तो आप जब वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो बेचने के लिए आपको बाजार चाहिए, तो बाजार वहां मिलेगा जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी। आज देखिए कि भारत को इतनी जो तरजीह दी जा रही है, नो डाउट कि भारत अपना विकास कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आ गया है, उसके पास अपने दूसरे बहुत से संसाधन हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि भारत में एक तो श्रम सस्ता है और दूसरा बहुत बड़ा मार्केट है। तो अमेरिका वगैरह जो अब भारत के साथ थोड़े से संबंधों को ठीक ठाक रखना चाह रहे हैं, ज्यादा आंख तरेरते नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन यही है कि अब उन्हें बाजार चाहिए, राइट। इसके बाद देखिए जो दो तीन पॉइंट हैं वो सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं मित्रों, चूंकि वक्त नहीं है तो मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, कि हर कोई अपने राष्ट्र हित को देखेगा कि किसके साथ वो संबंध रखे तो उसका अपना हित सधेगा। इसलिए आप पाएंगे कि जो इनफैक्ट सच ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न तो कोई स्थायी शत्रु होता है न कोई स्थायी मित्र होता है, जो स्थायी होता है वो केवल राष्ट्रहित होता है। कि इसीलिए लगातार समीकरण भी बदलते रहते हैं कि कभी सब देखिए कि आप अमेरिका का मित्र था पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान मित्र नहीं रह गया है, अब चीन का मित्र हो गया है पाकिस्तान। तो इस तरीके से वो चीजें बदलती रहती हैं और उसके हिसाब से फिर विदेश नीतियां भी बदलती रहती हैं, और शक्ति संतुलन भी है कि किस तरह से पूरे के पूरे विश्व में शक्ति संतुलन बना रहे, इसके लिए भी फिर लोग संगठन बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। जैसे आप अक्सर अखबारों में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में, खासकर दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में लगातार चीन अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कहीं दादागिरी भी दिखा देता है, तो इससे लोगों को, दूसरे देशों को लगता है कि ये तो शक्ति असंतुलित हो रही है। तो फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने मिलकर के एक अपना चतुष्कोणीय संगठन बना लिया कि भैया ताकि ये संतुलन बना रहे, तो शक्ति संतुलन के लिए भी विदेश नीति काम आती है। और फिर देखिए जो नेशनल सिक्योरिटी है वो तो बहुत बड़ी चीज होती ही है, राष्ट्रीय सुरक्षा से तो कोई समझौता नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के कुछ निर्धारक तत्व थे जिनकी मैंने चर्चा की, इन्हें आप थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिएगा और उदाहरणों के साथ देख लीजिएगा तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे कि ये दो देश ऐसा क्यों कर रहे हैं तो ये चीजें क्लिक करेंगे कि अच्छा इनमें ये चीज दिखाई दे रही है, और यहीं से फिर आपकी एनालिसिस पावर भी बढ़ेगी, उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है, इस आज के ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।